শাস্ত্র আছে, সিদ্ধান্ত আছে, সেই অনুসারে সবটাকে মেনে নিতে হবে। যেখানে গর্গঋষি বলছেন তোমার এই ছেলেটা নন্দ মহারাজ সমস্ত গোকুলে সমগ্র জগতের কল্যাণ বিধান করবে, তোমরা এর দয়ায় কৃপায় সর্ববাধা বিঘ্ন সব অতিক্রম করবে। পুরাণেন ব্রজপতি সাধব দত্ত পীড়িতা অরাজকে রক্তমানা জীর্ঘুদ্ধন সমাধিত সমেহিত। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন, সোজাসুজি বলছেন না, এখন বলছেন কি দেখো তোমার ছেলেটা কে জানো, যখন দেবাসুর সংগ্রাম হয়েছিল সেই সময়ে তোমার এই ছেলেটার প্রভাবে দয়ায় কৃপায় সব দেবতাগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, সেই ছেলেটা এই তোমার এই ছেলের দয়াতে দেবাসুর সংগ্রামে দেবতারা জয়লাভ করেছিলেন। দেবতাদের কোনো অহংকার করবার কিছু নাই, দেবতাদের চেষ্টায় জয়লাভ হয় নাই, তোমার এই ছেলে শুভেচ্ছা শুভাশীর বাদী তারা জয়লাভ করেছিল, তারই কৃপায় এরা সুরক্ষিত হয়েছিলেন দেবতারা। জয় তস্মিন মহাভাগা প্রীতিং কুর্বন্তি মানবা নারয়ম অভিযান অভিবন্তেতান বিষ্ণু পক্ষানি বাসুরা। অসুরগণ যেমন বিষ্ণুপক্ষীয় ভক্তগণকে পরাজয় করতে পারে না, সদরূপ যে সকল পরমভাগ্যবান মানব তোমার এই ছেলের প্রতি প্রতিযুক্ত হবেন, একে ভালোবাসবেন, কংসাদীন ন্যায় বাইরের যত শত্রু আছে তারা কেউ কিছু করতে পারবেন যদি এই ছেলে সহায় থাকে, তাদের ভগবান যার সহায় আছে তার আবার অসুবিধা কি, রাখে হরি মারে কে, ভগবান যার সহায়। সেই প্রসন্নে কিনি হা পরেরণ সজ্জ প্রসন্নে কিনি হা পরেরণ, ভগবান যদি আমার সহায়, ভগবান যদি আমার সাহায্যকারী, আমার তো কোনো ভয় নাই, ভগবান যদি প্রসন্ন তাহলে সব ঠিক আছে, ভগবান যদি আমার প্রতি অপ্রসন্ন আমার আর কিছু নাই। এই জন্য শাস্ত্রকার বললেন অরির মিত্রম বিষম সত্যম অধর্মম ধর্মম উচ্যতে সুপ্রসন্নে ঋষিকেশে বিপরীতে বিপর্যয়। বুঝতে পেরেছি, অরির মিত্রম নামটা পড়েছে, আমার যদি কেউ শত্রু থাকে থাকুক, সেই শত্রু আমার পরমমিত্র হয়ে যাবে। বিষম সত্যম আমাকে যদি কেউ বিষ খেতে দেয়, আমি যদি সেটা ভগবানে নিবেদন করি সেই বিষ অমৃত হয়ে যাবে। অধর্ম ধর্ম মুচ্ছতে সাধারণ মানুষ দেখতে যেন এটা যেন অধর্ম, এটা যেন দুর্নীতি, সেটা সন্মতি হয়ে যাবে, সেটা সব ধর্মে রূপান্তরিত হবে। সুপ্রসন্নে ঋষিকে ভগবান যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, বিপরীতে বিপর্যয় ভগবান যদি আমার প্রতি অপ্রসন্ন সহজ জ্ঞান গোল্লায় যাব কিচ্ছু থাকে। সেজন্য ভগবত প্রতিকামনা আমাদের এই সংসারে বাস করতে হবে, আমরা সর্বরকম ধর্মের পর্ব করব, দৌড়ঝাঁপ করব, শারীরিক মানসিক পরিশ্রম করব, কোনোটাই আপত্তি নয়, কিন্তু ভগবানকে বাদ দিয়ে নয়, ঈশ্বর চিন্তা বাদ দিয়ে নয়, নীতি আদর্শ বাদ দিয়ে নয়, এটাকে নিয়েও চলব, তাহলে সবটার মূল্যায়ন ভগবানকে বাদ দিয়ে নয়, ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়, সেই শিক্ষাই ভালো দিচ্ছে। তসাৎ নন্দায় নন্দাৎ মজোয়ন্তে নারায়ণ সমগুণ প্রিয়া কীর্তানুভাবেন ভূতয়স্য সমাহিত। সর্বশেষ উপদেশ গর্গঋষি নারদ গর্গঋষি বলছেন নন্দ মহারাজকে, শোনো নন্দ আমি শেষ কথা তোমায় বলছি এখানে কি, অতএব হে নন্দরাজ তোমার এই যে পুত্র রূপে গুণে স্ত্রী কীর্তিকে প্রভাবে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ তোমার ঘরে এসেছেন, জেনে রেখে দিও ছেলে তোমার বটে এতে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বয়ং ভগবান তোমার ঘরে এসেছেন বাৎসল্য স্নেহের বটি, তোমরা সমাহিত চিত্তে এই শিশুকে পালন পোষণ করবে, আদর যত্ন করবে, সব কিছু করবে, এর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও রাগ। যারা তোমার এই ছেলেকে ভালোবাসবে তাদের কোনো বাধা বিঘ্ন থাকবে না এই সমস্যা, তাও বলে দিই। এই বলে দুবার বলি খুব নিরাপদ হবে আমার
যেখানে ভগবানের কথা আলোচনা হয় না, যেখানে সনাতন ধর্ম ভাগবত ধর্মাশ্রয়ী সাধুগুরু বৈষ্ণবের আগমন হয় না, যেখানে ভগবত কথা শুধাশ্রয়ী প্রবাহিত হয় না, ভগবানের সেবা কথা আলোচনা মহোৎসবাদি যেখানে অনুষ্ঠিত হয় না, হোক না কেন রবীন্দ্রপুরী আমার সেখানে শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখছি আমরা মনুষ্য জীবন দুর্লভ, শুধু দুর্লভ নয় দুর্লভ, তার মধ্যে আবার সাধু সঙ্গ আরো দুর্লভ। ভাগবত জানাচ্ছেন দুর্লভ মানুষ দেহ দেহীনাং ক্ষণভঙ্গুর তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন। মনুষ্য দেহ দুর্লভ কেন দুর্লভ? শাস্ত্র বিচার দেখিয়েছেন দুর্লভ কেন, বহু বহু জন্মের পর আমরা এই মনুষ্য দেহকে তার একটা ইতিহাস পাই, ইতিবৃত্ত আমরা শাস্ত্রে পাই। সেইটা আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় আমাদের এর পূর্বে কতগুলো জন্ম গেছে, এক দুই তিন চার করে গুরুতে কত সময় লাগে, আর কতগুলো জীবন আমরা অতিবাহিত করেছি এই হিসাবের মধ্যে দেখানো হয়। জলযান অবলব প্রাণী, জলজ প্রাণী হয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি 9 লক্ষ বার, সাবরা লক্ষ বিংশতি 20 লক্ষ বার আমরা সাবর জন্ম লাভ করেছি, গাছপালা ইত্যাদি। ত্রিময় রুদ্র সংখ্যকা, ত্রিমূর পিঠে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি 11 লক্ষ বার, অক্ষিণাং 10 লক্ষ, পাখি জন্ম আমাদের হয়েছে 10 লক্ষ বার, ত্রিশ লক্ষানি পশব 30 লক্ষ বার আমাদের পশু জন্ম হয়েছে বিভিন্ন রকম, চতুর্লক্ষানি মানবা আর মানুষের মতো চেহারাও পেয়েছিলাম 4 লক্ষ বার। এরপর আদর্শ গৃহস্থ ঘরে পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট হয়ে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বৈরাগ্য ইত্যাদি গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, এর পূর্বে এতগুলো আমাদের জন্ম ঘটিত হয়েছে। এই জন্য বলছেন দুর্লভ মনুষ্য জন্ম। শাস্ত্রে আলোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই ভগবান প্রথম যে সৃষ্টি করেন তারও একটা ইতিহাস দেওয়া আছে, যে সনাতন হিন্দু শাস্ত্রেও এই ইতিহাস আছে, খ্রিস্টান জগতেও বাইবেলের মধ্যেও সেই ইতিহাস আছে, মুসলিম ধর্মের কোরআন শরীফের মধ্যেও সেই ইতিহাস দেখানো হয়। সেখানে দেখা যায় ভগবান প্রথম অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করে, সৃষ্টির মধ্যে প্রথম তার ছিল জল, যেটা আজকাল ছেলে মেয়েদেরও শেখানো হয়, পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ ফল। তারপর জলজ প্রাণী সৃষ্টি হয়, তারপর উভচর প্রাণী সৃষ্টি হয় যাদের অ্যান্থিবিয়াস বলা হবে, তারপর স্থলচর প্রাণী সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে ভাগ করেছেন প্রথম নিরব প্রাণী সৃষ্টি হয় সরীসৃপ প্রাণী, এদের প্রথম সৃষ্টি করা হয়। তারপরে পাখি জন্ম, তারপর পশু জন্ম, এসব জন্মের পর ভগবান দেখলাম এদের যে সৃষ্টি করা করলাম আমি, আমার সঙ্গে এদের ঠিকভাবের আদান প্রদান হবে না। ভগবান ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তারপরে তিনি তার নিজের আকারের মতো করে একটা আকার দিয়ে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন। সেই মানুষ যখন সৃষ্ট হল, তাদের ভগবান জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা নীতি আদর্শ মানো? তোমরা বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্ব নিয়ন্তা ভগবান একজন আছেন মানো? ওরা বলল, আমরা কিছুই বুঝি না। ভগবান তাদের মনুষ্য বলে স্বীকৃতি দিলেন না। দ্বিতীয় গোষ্ঠী যখন আবার সৃষ্ট হল, তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এটা মানো? এই দুটো, ওরা বলল, নীতি আদর্শ মানতে পারি আমরা, কিন্তু ভগবানটা কোনো সব কিছু মানি না, বুঝি না। তাদেরও মনুষ্য বলে স্বীকার করা হল না। তৃতীয় গোষ্ঠীকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন ভগবান, তোমরা নীতি আদর্শ এবং ভগবান মানো? তারা বললেন, আমরা দুটোই মানি। তাদের ভগবান বললেন, তোমাদের মনুষ্য বলে স্বীকৃতি দিলাম। সেই মানুষ যখন সাধন ভজন করতে শুরু করলেন সদ্গুরু পদাশ্রয়ে, তখন তাদের একটা বিশেষণ দাব। মনুষ্য গোষ্ঠীকে যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন তাদের বিশেষণ এসেছে মুখলিত চেতন মনুষ্য। এর আগে যে জন্তু জানোয়ার যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের বিশেষণ এসেছে আচ্ছাদিত চেতন, সংকুচিত চেতন, এই বিশেষণ রূপে। তার মধ্যে বৃক্ষ তৃণ গুল্ম লতা পাখি পশু সব পড়ে গেল। থার্ড স্টেজে মানুষের কথা এসেছে, সেখানে বললেন মুকুলিত চেতন মানুষ। যারা সাধন ভজন শুরু করলেন, এদের বলা হলো বিকশিত চেতন মনুষ্য। যারা সাধনে সিদ্ধি লাভ করছেন, তাদের বিশেষণ দেওয়া হলো পূর্ণ বিকশিত চেতন মনুষ্য। এইভাবে সনাতন ধর্মে জীব সৃষ্টি রহস্য এবং চেতনতার ক্রমোন্নতি পর্যায়ে ডেভেলপমেন্ট অফ থিওরি আস্তিক দর্শনের ক্রমোন্নতি পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুন্দর আলোচনা এর পিছনে আছে। তাহলে মনুষ্য জন্ম কত দুর্লভ, সেটা চিন্তার বিষয়। ভগবান যে এই সৃষ্টি করছেন, এবং সকলের শেষে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন, তারপর তিনি সন্তুষ্ট হলেন এদের সঙ্গে আমার ভাবের আদান প্রদান হতে পারবে এই ভেবে শ্রীমদ ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সৃষ্টিয়া পুরাণী বিবিধান্য জয়াত্ম শক্তিয়া বৃক্ষা সরিত্রী পশুন খগদন্দ শুন রতুষ্ট হৃদয় পুরুষং বিদায় ব্রহ্মাবলোকধীচন মুদমাপদেব। এই শ্লোকেতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে কথাটা আমি আগে বললাম, মানুষ হয়েছে, চেহারাটা মানুষের মতো হয়েছে, সমাজে স্লোগান শুনতে পাচ্ছি মশায় আমরা মানুষ, মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই, মানুষ হয়ে বসবাস করতে চাই, এ কথা শুনছি কানে আসছে, মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই, মানুষ হয়ে বসবাস করতে চাই, কথাগুলোর অর্থ কি, শাস্ত্রীয় অর্থ কি, মানুষের সংজ্ঞা নিরূপণ করা হলো কাকে, আগেই বলা হলো যারা নীতি আদর্শ পরায়ণ, যারা বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্ব নিয়ন্তা ভগবান একজন আছেন এই জগতের অধিকর্তা, তাকে মেনে নিচ্ছেন, আত্মস্বরূপ মেনে নিচ্ছেন, পরমাত্মার স্বরূপ মেনে নিচ্ছেন, জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করছেন,
উসি মন্দির অব ইয়ে লোক রাত ভর নেই খায়ে, দিন ভর ভি নেই খায়া, সোয়া ভি নেই দুঃখ কে মারে, আর উসি দিন কি নিসিংহ চতুর্দশী ভগবান নিসিংহ কাজ কাজ और ये लोग उपवास रहे थे, रात भर सोए भी नहीं, उनका जागरण भी हो गया, उपवास भी हो गया, और नृसिंह जी का वो मंदिर पिता पिता था किसी मरने के कारण प्रहलाद महाराज के रूप में जन्म तो हुआ। अब संस्कार कैसे कैसे होता है, जब वो गर्भ में माता के फर्क में थे तो उसके पिता हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज जी के वो कठोर तपस्या करने के लिए, देवताओं का भी सब कुछ ले लेने के लिए, ब्रह्म पद पाने के लिए, मैं किसी से मरूं नहीं, अजर मर बन जाऊं, वो तपस्या कर रहे हैं 7,000 वर्ष वो तो धो करके पानी दिया, शुद्ध किया जो गंगा में, हाँ तो धो करके सब शुद्ध कर करके फिर आचमन दिया, प्रणाम किया, इतना दिन हो गया बूढ़े। अब हम लोग विचार नियमानुसार से ये नहीं पा पड़े, यदि गंगा को भगवती मान लिया जाए, गंगा मान लिया जाए, तो जूता को ऊपर न रख करके उनको जाकर के पहले प्रणाम करेंगे, जूता तो उनके चल जाए जाएंगे। यदि हम अत्यंत अबोध हैं, नहीं समझते हैं, बच्चा कुछ नहीं समझता है, समैया की गोदी में सट्टी कर देता है, पेशाब कर देता है, उल्टी कर देता है, वो दूसरी बात है, क्योंकि जब उसको बुद्धि हो जाती है, समझ में आ जाती है, तब ऐसा काम नहीं करता। तो जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक ना हो तो उसमें कुछ भी कर दिया, क्योंकि साधु का देश ये आ रहा है और कुछ कुछ साधुता भी हमारे अंदर में आ रही है, तो गंगा में सिर्फ कुंडी नहीं करना चाहिए, उसमें हाथ मुख धो करके हम मैच पुड़ेंगे और कपड़े सीखेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए, उसको अंतर शुद्धि, बाह्य शुद्धि और भगवत प्रेम के लिए होना चाहिए ना। हम दुखी इसलिए लगाएंगे, ये भगवती गंगा है, क्योंकि प्रथम आसन से ही शंकर जी अपने शीतल को धारण करते हैं, और हम इसको इसलिए कि हमारे अंदर में बहुत से अनर्थ है, ये अनर्थ पाप बुद्धि सब दूर हो जाए, हम तो लोग तो इसके लिए भी नहीं करते, वो तो कृष्ण प्रेम के लिए, इनके स्नान से, इनके आगमन से, इनके ध्यान से स्मरण से कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम होता है, उसकी वैशिष्ट की गति होती है। एक समय की बात है, एक बाढ़ आई तो किनारे तट पर बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक चला गया। वो सांप का एक गंगा जी के पानी सुने के साथ ही साथ वो तो मरा, उसकी आत्मा उसमें निकली। आत्मा निकलते ही वो चतुर्भुज बन गया ने? और गरुड़ जी देखा नहीं तो चतुर्भुज बन गया, तो गरुड़ जी अपने पीठ पर उसको चढ़ा दिए और उसको चढ़ा करके तो बैठने चले गए। इतनी गंगा जी की गुना साखत जा सगर के पुत्र लोग मर गए, जाने कितने दिन तो कैसे ही पड़े। भगीरथ जी गंगा ले गए और उनके स्पर्श से कितने दिनों का पड़ा हुआ हाड़ केवल था, मांस संस्पर्श तो बन गया था हाड़, बस उसका उसी के साथ में संपर्क छूटे ही बस उनकी आत्मा जो थी वो सर गई। हाड़ तो आत्मा है नहीं किंतु चूंकि उसे उसका संपर्क था तो वो सर। तो गंगा जी को ऐसी पति पाऊंगी तो भी कहा गया पतित पावन है तो गंगा जी के में स्नान करने से मज्जन करने से उनका आचमन इत्यादि लेने से बहुत दिनों के बाद में गंगा जी इन सब पापों को दूर करने वाली होती है। किंतु वैष्णव जो होते हैं संत जो प्रेमी भक्त वो तो एकदम दर्शन मात्र से ही ये सब पापों को वो दूर कर देते हैं, ये सब दूर करने वाली है। तो ऐसे वैष्णवों के साथ में धीरे धीरे अनर्थ होता है। अनर्थ होते हैं चार प्रकार, सर्वधर्म असत कृष्ण हृदय दौर्बल्य अपराध। हालांकि सर्वधर्म अभी हमने मनुष्य को मान लिया, इसको मान लिया, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, उसका पिता हूं, उसका पुत्र हूं, मैं काला हूं, मैं बुरा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शुद्ध हूं, ये सब हमारा ये सब कोई परिचय। हम इसके अंदर में शुद्ध स्वरूप से भगवान के रिश्तेदार हैं। जी मात्र प्राणी मात्र जहां भी है वो भगवान का रिश्तेदार है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदार है, यहां पर भी कोई वो जीव का दास भगवान का दास। हम उसी दासत्व को किसी कारण से भगवान से विमुख होकर के भूल करके संसार में सुख हो गए, किंतु यह सुख जो आनंद है वो स्वयं भगवान है। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक भाई सुख नहीं होगा, इसलिए अपने स्वरूप को भूल जाना ये एक अनर्थ है। इसलिए सत्य में चिंतन करना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इसके अंदर वो भी नहीं हूं, मन भी नहीं, मैं आत्मा हूं, भगवान का निष्ठदार, मैं भगवान की दासी हूं, ऐसी भावना। भगवान के स्वरूप का बोध नहीं करता, इसलिए कहा भगवान क्या है कोई कहेगा, जितने जीव हैं तो अहम मैं ही वही ब्रह्म, पशु पक्षी की पतंग इत्यादि सब कुछ ब्रह्म है, भगवान निराकार है, वो अलग है, वो निरंजन है, अपने को ही भगवान मान लेगा। अरे तू भगवान है तो फिर तुमको भजन करने की क्या जरूरत, हम ब्रह्मात्मी यदि कुछ हो गया भजन करने में कोई जरूरत। कोई कोई कहेंगे जितने देवता हैं वे सभी गणेश जी भी, शंकर जी भी, ब्रह्मा जी भी, देवता भी, ये सभी भगवान, ये सब स्वरूप ब्रह्म भगवान के स्वरूप का ये भ्रम है। भगवान ही भगवान है, जिसको गीता भागवत उपनिषद इत्यादि जिसको भगवान कहते हैं वही भगवान है। हमारे मन के अनुसार में भगवान नहीं, नाग प्रभु की ऋषियों ने, व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने जैसा अनुभव करके शुद्ध शुद्ध भाव है वैसा लिखा। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण का स्वरूप भगवान का स्वरूप भी बताया गया वही यथार्थ में भगवान का स्वरूप। एक एक अनुसरा उनका कृष्ण स्वरूप भगवान कृष्ण ही सन्निधान जो सबसे अधिक सुंदर हो, सबसे अधिक ज्ञानी हो, सबसे अधिक बलवान हो, सबसे अधिक ऐश्वर्य संपन्न हो, वो तो भगवान हो सकता है। तीन चीज है, एक है सब की आनंद, तीन चीज है जिनका सत्ता था तो रूप आकार खूब सुंदर हो और उसमें सबसे बलवान है, सबसे आकर्षण करने वाला है, ऐसा ज्ञान जो विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं, ज्ञान का वो मूल और आनंद जितना है उसका मूल वो आनंद है जिसके देखने के लिए आनंद है। आनंद होता है प्रेम में, वो प्रेम की प्रतिनिधि ऐसे ये भगवान कृष्ण, कृष्ण समस्त भगवत्ता की जड़ है। उन्हीं के ही जितने भी अवतार इत्यादि होते हैं, सब जितने भी अवतार हैं सब कुछ, इसलिए कृष्ण को भगवान है। वो कृष्ण रूपवान है, शक्तिमान है, उनकी अनंत शक्तियां हैं, उनकी शक्ति पराशक्ति है, फलादिन शक्ति वो राधा जी उनकी सबसे बड़ी शक्ति। ये पर्थ अपना भ्रम दूर गया, कृष्ण ही परम भगवान है, भगवत्ता की जड़ है। ये माया, माया किसको कहते हैं, मां या जो नहीं है उसको वही मान लें, इसका नाम है माया। ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे परिवार हैं, यह संसार मेरा है, इसको मान लेना ही माया है। अनित्य वस्तुओं के प्रति जिससे हमारा कोई भी संपर्क नहीं उसको अपना मानना और उसमें आसक्त हो जाना यही माया है, इसी का नाम है संसार। घर तो साधुओं के भी होते हैं, संतों के भी होते हैं, व्यास की भी कुटी है, तो उनका घर घर नहीं है। जो लोग इस संसार में कुछ दिनों के लिए जो माया है इसके चक्कर में पड़ करके इसमें आसक्त होकर के इसको अपना मान लेना यही माया है, माया का स्वरूप। इसको समझते हैं कि यही हमारा है, इसी से हमें सुख मिलेगा, यह है माया। और भक्ति का स्वरूप नहीं जानना, ये भी एक भक्ति कहते हैं किसको, भक्ति कहेंगे स्वाभाविक रूप से जब जीव की चित्त वृत्ति भगवान के तरफ में कई धारावत अभिन्न गति से लगती है तो ये भक्ति, उसमें अपनी तरफ से कोई भी अभिलाषा नहीं, कोई भी उनसे कामना नहीं है। कर्म ज्ञान योग तपस्या आलस्य प्रमाद को छोड़ करके जो कुछ भी हम करेंगे उस प्रभु के लिए जब हम करेंगे तन मन बचा तब वो भक्ति होगी। ये चार चीज, इसके बाद नहीं होता है। और स्वरूप भ्रम असत तृष्णा, असत माने जो सत नहीं है, ऐसी कामनाओं का नाम है असत तृष्णा। भगवान के से हम मान लें कि हमारा बच्चा बीमार है तो कहेंगे प्रभु ये बच्चे को रक्षा कर, किंतु वो बच्चा एक दिन अपने समय पर मृत्यु पर हो तो उससे जरूर उसकी मृत्यु होगी, तुम्हारी भी होगी उसकी भी होगी, ये सब असत तृष्णा है। ये हिरण्यकश्यपु ने भगवान से वर मांगा मैं किसी के हाथ से न मरूं, अजर अमर बन जाऊंगा, ये असत तृष्णा है, जरूर मरना है। इस तरह की जितनी भी कामनाएं वासनाएं ये सब को छोड़ करके भगवान की प्रीति के लिए जब तब इसको सेवा या भक्ति कर। दूसरी जितनी प्रकार की तृष्णाएं हैं असत तृष्णाएं, स्वर्ग की तृष्णा, इस जन्म में सुख की लालसा, पर जन्म में हम दुख सुख की लालसा करें, हम मुक्ति चाहते हैं, मुक्त हो जाए मैं भगवान में मिल जाऊं, भगवान में मिल तो जाऊं किंतु कैसे मिलूंगा, इस पर विचार करना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर हम लोग तीन आदमी थे, तो तीन आदमी से फिर पांच आदमी सुनने में कथा के लिए, फिर पांच आदमी से आप लोग, इसके बाद ये लोग आए इस कमरे में, हम लोग अब इतने आदमी मिल गए, मिल तो गए किंतु एक से पांच, फिर तीन आ गए, दो आ गए तो सात, सात के बाद में फिर पांच आ गए तो सात पांच बढ़ते गए हम लोग, सभी मिलकर के एक नहीं हुए। इसलिए कोई भी मुक्ति नहीं भगवान के साथ में मिलकर के, भगवान होकर के एक नहीं रहेगा, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। मिलने का ये तात्पर्य है, जैसे वन में चिड़िया या घोंसले में लीन हो गई, एक गाय थी चरती चरती वन में चली गई, आंखों से उजल हो गई, तो हमने कहा कि ये जंगल में विलीन हुई, मैंने क्या आंख से दिखाई नहीं पड़ी, उजल हो गई, किंतु गाय का स्वरूप जंगल में मिला नहीं। ऐसे ही भगवान के साथ है, यहीं पर लोटा रखा है, गंगा में स्नान करने गया, लोटे को पानी में डाल, अब लोटा दिखाई नहीं पड़ा, तो हमने कहा जैसे ये लोटा पानी में डूब गया है, जल में विलीन हो गया। अच्छा, वो लोटा उसमें पानी में विलीन होकर के जब पानी बन गया है, तो हजार के में पानी नहीं बनेगा। ऐसे ही जीवात्मा भगवान में मिले होकर के उनकी सेवा करती है, उन्हें मिलती है। इसका जिसको भ्रम है वो भी एक, इसी तरह से बहुत प्रकार के ये अनर्थ है, काम को लोभ मद मोह माचर्य, ये भगवान की भक्ति से हमें विलग कर देते हैं, ये भी अनर्थ है। क्रोध किस लिए, हम लोग सांसारिक वस्तुओं के पाने में यदि किसी ने कोई बाधा दी तो उसको हमको क्रोध हो जाता है, मैं कोई चीज चाहता हूँ और किसी ने आकर तो उसमें बाधा दी तो क्रोध हो जाएगा। किंतु संसार की चीजें ही प्राय सुखी के रूप में है, उनके मिलने से भी कोई सुखी नहीं होगा। अभी मान लें कि कोई हमको 1000 रुपया दे रहा, किसी ने आकर के बाधा दी, हमको तो क्रोध होगा। अच्छा, 1000 रुपया मिलने से हमको शांति और सुख मिल जाएगा, हो सकता है कि अशांति बढ़ जाए, किंतु उसी के लिए हम लोग बिगड़ते हैं। इसीलिए काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, यही की बात का कारण है, अशांति का कारण है, किंतु हम लोग इसी को समझते हैं कि हमारे कल्याण के लिए है, इसीलिए हम लोग परस्पर लड़ते ही लड़ते और ये सब करते हैं। यदि इसमें न रह करके भगवान का भजन हम उसमें करें तो चित्त में शांति आ जाएगी, सुखी हम लोग रहेंगे, किंतु हम लोग करते हैं उसी के लिए, चित्त भ्रमित हो जाता है और भगवान कहीं दूर नहीं है। जहां कहीं भी साधन करके सारे संतों के वचन को सुना जाए और उनकी सेवा की जाए और भजन किया जाए, वहीं से वो प्रसन्न। इसलिए भजन करने में यदि हम भजन करेंगे तो अनर्थ की निवृत्ति होगी। नाम में बड़ी भारी शक्ति, भगवान की कथाओं में बड़ी भारी शक्ति है। कारण है हमारे नारद जी, सुखदेव गोस्वामी जी, व्यास जी, व्यास जी कुछ चिंतित थे, खूब चिंतित थे, उनका चित्त चंचल हो गया। उन्होंने गीता बनाया, उन्होंने पुराणों की रचना, उन्होंने वेदों का विभाग किया, उन्होंने ब्रह्म सूत्र बनाया, वेदांत सब उन्होंने, पद्म पुराण स्कंद पुराण इत्यादि 17 पुराण भी 18 पुराण भी बनाए, भागवत को संक्षेप में बनाया। उसने सब कुछ उन्होंने बताया, महाभारत इत्यादि बताया, सभी उनका भ्रम खिन्न था। क्यों खिन्न था? इतना साफ संरचना करने पर भी, जैसे बहुत से पंडित बहुत बड़े भारी विद्वान होते हैं, बड़े भारी विद्वान होते हैं और शास्त्रों का सब शास्त्रों को पढ़े लिखे हुए, तो भी एक निष्ठा के साथ में भगवान का भजन नहीं कर पाते, निष्ठा उनकी नहीं जन्मती। गणेश जी के प्रति भी निष्ठा, शंकर जी के प्रति भी, ब्रह्मा जी के प्रति भी, दुर्गा के प्रति भी, कृष्ण के प्रति भी, राम के प्रति भी निष्ठा एक जगह नहीं लगती, इसलिए अनन्य नहीं हो पाते। इसलिए उन्होंने इतने पुराण बनाए हैं, कितने देवताओं की बात करी, किसी में सूर्य पूजा की, किसी में शंकर जी की, किसी की में गणेश जी की पूजा की बात, किसी में कुछ कही, किसी में कुछ कही। यदि हम पद्म पुराण देखते हैं तो उसमें श्रीमद् भागवत का महात्मा आया है, उस महात्मा ने लिखा कि भागवत के पढ़ने से भक्ति होती है और भक्ति से मुक्ति मिलती है, लिखा है मुक्ति मिलती है। ना ना ना, ऐसा लिखा हुआ है महात्मा ने लिखा, महात्मा तो पद्म पुराण में लिखा है, तो वो पुराण बनाते समय में वैसा कह सकते हैं, किंतु भागवत जब बना लिया तब ऐसी बात नहीं। इसलिए भागवत ने कहा मुक्ति अत्यंत तुच्छ है, भगवान के देने पर भी दीयमाने अपि न गृह्णन्ति, भगवान के देने पर भी ये मुक्ति भक्त लोग नहीं देते, और इसको नरक से भी अधिक तुच्छ समझते। भक्ति उद्देश्यते को ये धान के की जो भूसी होती है उसको लाख वर्ष तक, धान की भूसी को लाख वर्ष कूटने पर भी चावल का एक दाना नहीं आता, धान को कूटने से आएगा किंतु भूसी को कूटते रहो तो नहीं है। तो इसे मुक्ति के लिए प्रयास करते रहो, केवल आत्मज्ञान के लिए प्रयास करो, कुछ भी लाभ नहीं होगा, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, किंतु भगवान का नाम करने से सहज वो चीज होता है। इसलिए मुक्ति को तुच्छ बतलाया सर्वत्र। फिर वो कहेंगे जो भागवत पढ़ने से भक्ति होकर के भक्ति से मुक्ति होती है, ऐसा कर सकते हैं? इसलिए इसलिए और पुराण में जो लिखा उसे पुराण में से उनको शांति नहीं मिली, तब नारद जी के पास में आए, नारद जी उनके पास में। नारद जी ने पूछा कि आपका चित्त क्यों दुखी है, इतना आपने शास्त्र लिखा और इतने बड़े भारी ज्ञानी है, जगत के आप मार्गदर्शक हैं, पुराण शास्त्रों से वक्ता भी हैं, और आपको ऐसा क्यों हुआ? पहले यही मेरी समझ में नहीं आता। तब उन्होंने बताया आपने सब कुछ किया, भगवान का निर्मल जस आपने गान नहीं किया, कृष्ण की गाथा आपने नहीं करी, कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, वो रस स्वरूप हैं, गोपियों की आराधना सबसे श्रेष्ठ है, और गोपियों की महिमा और उनके भक्तों की महिमा आपने नहीं गान किया, इसलिए आपका कृष्ण। इसलिए धर्म वह धर्म जिसमें भागवत के इस विषय का वर्णन नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है, उनके चरणों के नख से जो आभा निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्मा, वो निर्विकार है ज्योति, किंतु जहां से वो ज्योति निकलती है, ज्योति सिर्फ धनकरे रूपम अकुलम चानु सुंदर, उसके भीतर में ज्योति है, ज्योति के भीतर में वो भगवान है। तो इसलिए कृष्ण सबसे फाउंटेनहेड है, उनसे बढ़कर के और कोई सकते हैं, और गोपियों की आराधना जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। गोपियों की आराधना कैसी? पति भाव से रुक्मिणी इत्यादि का आज इन लोगों का है, वो पति भाव से कृष्ण के प्रति श्रृंगारमयी भावना के साथ में कृष्ण की आराधना, विवाह होते ही पति स्त्री दासी बनती है, और वेद के बंधन में, वाक्यों के बंधन में वो बन जाती है, पति भी वो भी लगड़ा लूढ़ा जैसा भी हो, धार्मिक जैसा भी हो, अपने पति की सेवा करना ही पत्नी का कर्तव्य है, ये वेद की ये सब आज्ञाएं हैं, प्रेमी हो ना हो जैसे, यहां तक कि भगवान भी हैं वो पति रूप में ही उनको बनाए, ये वेद की ये बंधन है। गोपी ने इन सारे बंधनों को खत्म कर दिया, अपनी होती हुई भी भगवान को उपपति के रूप में मान कर दासी नहीं। कृष्ण कहेंगे, रामचंद्र कहेंगे पिताजी को बन से निकाल दो, बन में दो बार निकाल दिया ना रामचंद्र, वही रामचंद्र जी कृष्ण है, यदि वो कहेंगे तो कहीं हम तेरे घर की दासी हैं, ये निकाल देगा। राधा जी को ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि राधा जी के चरणों की धूली सिर पर लगा लेंगे। जो राधा जी कहेंगे वो करेंगे। राधा जी के चरणों में यदि पसीना आ जाएगा नित्य करते करते, तो उसको भी अपने पिताम्बर से पूछें मुखार बिंद तो क्या है। ऐसे ये गोपियों की प्रेममयी सेवा है, इसलिए कृष्ण उसके बसी पूछ हो जाते हैं। और सब जगह कृष्ण सबके आराध्य हैं, किंतु ब्रज में वही कृष्ण गोपियों के आराधक हैं। इतना प्रचुर प्रेम उन लोगों के अंदर है, इसलिए गोपियों का आराधना सबसे श्रेष्ठ आराधना है। ऐसा जान करके जो लोग इस ध्यान से गोपियों की उपासना के अनुसार उपासना करते वो भजन सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही यह सब गुरु जी शिक्षा देते हैं, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो जाए, जिसको लोभ नहीं है उनके लिए बड़ी भक्ति भगवान के संबंध में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्तव साक्षात निवेदन, ये सब भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो। सबको जानने की कोई जरूरत नहीं है। सतंग प्रसंगाम विद्य संविदौ भवन चरित कर्म रसायना तथा सद्योनाथ आत्म अपवर्तवी सदा रती भक्ति। अरे भाई भगवान कौन है क्या ये सब जानने की तुमको जरूरत नहीं। तुम मूर्ख बनकर के उनकी कथाओं को सुनो। उन लीला कथाओं में इतना इतनी शक्ति है, जो लीला कथाओं को श्रवण करते 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 तुमने साधन भक्ति भाव भक्ति अंत में प्रेम भक्ति का अपने उस लीला कथाओं में भी ऐसी शक्ति है। भगवान तुम्हारे अंदर में प्रवेश करके तुम्हारे समस्त कलमश को जितने अलग से सब को दूर कर देंगे, और दूर करके वहां पर स्वयं चित्त के सिंहासन पर वो बैठ जाएंगे। ऐसी ये भक्ति नहीं है। तो इन सब साधनों का वो साधन क्या है, चौसठ प्रकार के हैं, तो है हजारों प्रकार, उसको संक्षेप करके चौसठ प्रकार का बदला है। जिसको लोभमयी शब्द है भगवान की लीला कथाओं में, मैं गोपियों जैसी भजन जैसे करना चाहता, मैं यशोदा मैया जैसे कृष्ण को अपना लाड़ला पुत्र समझ करके भजन करता, मैं सखाओं जैसा कृष्ण को अपना बंधु सखा मान करके भजन करता, मैं हनुमान जैसा प्रभु को प्रभु मान करके अपने को दास मान करके भजन करता, जिसको जैसा भाव है उसके अनुसार मैं उनके कथाओं को सुन करके उनके प्रति एक भाव में जमा कर, जिसको भी ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ वैसे ही भागवत की कथाओं का शास्त्रों का ये सब मूर्ख जैसे साथ सब लोग हैं उनके साथ में बैठ करके श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाठ श्रवण धीरे धीरे जब किसी जन्म में उसका लोग उत्पन्न हो गया तो ठीक है, नहीं तो बैठे की स्थिति नहीं है। और इनकी सुनते सुनते भजन करेंगे, अब क्या हुआ आगे बदला है। तब वो अनर्थ निवृत्ति ऐसा भजन करने से धीरे 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 उनके अनर्थ दूर हो जाए। कौन अनर्थ, काम क्रोध लोभ मर्द मोह मात्सर्य सब धीरे धीरे नव अपराध, नाम में भी अपराध है। यदि भगवान का नाम कोई करता है और सोचता है दान करने से भी वही फल होगा जो भगवान के नाम करने से होता है, तो उसका अपराध हो जाएगा, उसका नाम फल नहीं देगा। जितने भी शुभ क्रियाएं हैं उनके साथ नाम को बराबर करने से सब तब बढ़ हो जाएगा। भगवान के सामने जहां पक्षी कृष्ण है उनके साथ में सब देवताओं को एक साथ में नहीं बैठाना चाहिए, ये भी अपराध है। कृष्ण जो सर्वेश्वर हैं और कहां एक राष्ट्रपति के साथ में एक अपराधी को बराबर सिंहासन पर बैठा दिया, ये तो एक तरह से संभव हो सकता है, क्योंकि वो भी मनुष्य है वो भी मनुष्य है। जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे राष्ट्रपति ना, और वो भी रिटायर्ड हो जाएगा तो हो सकता है कि समान रूप में रहे, किंतु वहां पर समान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सर्वेश्वर सब ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके साथ में और देवताओं को बराबर आसन पर नहीं बैठाना चाहिए, बराबर सम्मान भी नहीं तो ये सब अपराध है। इसलिए दस प्रकार के नवा अपराध हैं, बहुत प्रकार की सेवा अपराध हैं, भगवान के सामने जोर से चिल्लाना रोना इत्यादि, ठाकुर जी के सामने में कोई आ गया तो उसके ठाकुर जी के सामने उसकी स्तुति वंदना प्रणाम करने लगे, केवल गुरु जी को किया जा सकता है और दूसरे को यदि करता है तो अपराध हो जाता है। जान मान पचर करके साधु जी के सामने, ये सब अपराध। तो इन सब अपराध को धीरे 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 दूर करते 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 जितना ही ये दूर होगा उसकी श्रद्धा जो थी अब निष्ठा आई, निष्ठा के रूप में बदलने लगी। एक नैष्ठिक की भक्ति होती है और एक अनिश्चिता भक्ति होती है। हम लोगों की भक्ति अभी कुछ कुछ अनिश्चिता है। कैसे यहाँ रह करके भजन करें, वहां की करें, ये ऐसा करें, वो स्थान ठीक है, ये स्थान ठीक है, क्या करें, कैसे रहें, घर में रहें कि बाहर में रहें, घर छोड़ दिया ये ठीक नहीं किया, या घर में है तो कहते हैं ये घर में रह करके ठीक नहीं किया। अभी चित्त अभी दो नामों में चढ़ा हुआ डवाडोल है, ये सब अनर्थ है। ये धीरे धीरे निष्ठा में आए, कभी कभी भगवान का खूब कीर्तन कर रहे हैं, वैष्णव लगाई बात बहुत सुंदर कीर्तन करता है रघुनाथ, बहुत सुंदर करता है, सुंदर रसोई बनाता है, और रघुनाथ बहुत सुंदर रसोई बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते, बहुत वैष्णव सेवा करता है। आज जब कुछ देखा अनर्थ देखा तो ठाकुर जी रघुनाथ तुम पूछो पड़ते तुमको तो भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, तू महाक्रोध करता है, तू ऐसा है, तू ऐसा भूसा मन खा का जाओ और क्या। जब हमको ये लोग अब कहाँ जाए क्या करें, ये क्या चीज चित्त दामाद अनिश्चिता ये भक्ति। कभी कभी खूब प्रशंसा मिलने लग गई, बाहर के लोग भी आकर बस बहुत अच्छा लड़का है, बहुत भजन करता है,